ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने आईटीओ स्थित छठ घाट का दौरा किया। छठ पर्व पर यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राजधानी में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने आज आईटीओ पर छठ घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले केवल 60 घाटों पर छठ पर्व मनाया जाता था। इसकी संख्या पिछले 10 सालों में बढ़कर 1000 हो गई है। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर पूर्ण व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही हैं।
दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं।
इस बीच शहर में छठ घाटों की खराब स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यमुना नदी की सफाई पर दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। श्री पूनावाला ने शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए भी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
यमुना जी पर थिक लेयर ऑफ फोम है और उसको हटाने के लिए अब डिफोमर इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, स्मॉग का एक थिक लेयर तो पूरी दिल्ली पर छाया हुआ है। छठ पूजा आने वाली और वो पानी जहरीला, जहरीली हवा और जहरीला पानी, इसके लिए कारण सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी की दोषारोपण की, ब्लेम गेम की जहरीली पॉलिटिक्स।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने छठ पर्व के मद्देनजर दिल्ली सरकार से यमुना में स्वच्छ और साफ जल की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छठ पर्व में 3 दिन बाकी हैं और दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम ने छठ पूजा के लिए कोई तैयारी नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने यमुना में बढ़ते अमोनिया युक्त पानी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसके चलते नागरिकों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। रेलवे द्वारा छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। आज भीड़ को देखते हुए 185 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं और लगभग 25 विशेष रेलगाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रवाना हो रही हैं। इनमें सहरसा, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, दरभंगा, इंदौर और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि रेलवे नियमित रेलगाड़ियों के अलावा विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि छठ पर्व मनाने जा रहे यात्रियों की सुविधा के लिए मांग आधारित रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं।
छठ पर्व को देखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा जाने वाले लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। नॉर्मल ट्रेन के अलावा आज दिल्ली एरिया से 25 स्पेशल ट्रेन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम अर्थात पूरी भारत के क्षेत्रों को जाएंगी और ये जो रूटीन हमारी करीब 50 ट्रेन चलती हैं उनके अलावा होंगी। इसके अतिरिक्त हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे जो कम्प्लीट जनरल कोचेज वाली होंगी।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। भारतीय रेलवे त्योहारों के मौसम को देखते हुए पिछले महीने की पहली तारीख से इस महीने की 30 तारीख तक यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए करीब 7000 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति के लेकर आज भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान श्री सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर बस मार्शलों और सिविल डिफेंस कर्मियों की बहाली में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बस मार्शलों की नियुक्ति को निलंबित करने वाले आदेश का प्रस्ताव दिखाते हुए उस पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बस मार्शलों को उपराज्यपाल ने नियुक्त करने का निर्देश दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक उनकी नियुक्ति के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
माननीय उपराज्यपाल जी ने जब स्पष्ट निर्देश दे दिया कि 1 नवंबर से इनकी बहाली करो, तो क्या कारण है 4 तारीख हो गई आप उनको बहाली नहीं कर रहे? वो गरीब लोग हैं, अगर उनको एक एक दिन का उनका वेस्ट होता है तो उनके पैसे कटते हैं। आप उनको रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए। आतिशी मालेना तो यही सवाल पूछने आया है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री आतिशी भी उपस्थित थी। उपराज्यपाल ने बताया कि पुलिस, आईटी और न्यायिक बुनियादी ढांचे के आवश्यक सुधार के मामले में अब तक की प्रगति संतोषजनक रही है। श्री सक्सेना ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता दूरगामी कानून है। इनका उद्देश्य आम नागरिकों के लाभ के लिए कठोर औपनिवेशिक विरासत से कानूनों को सरल बनाना है। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और जनशक्ति को उन्नत करने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने 90 गीगावाट सौर क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि देश वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
स्वच्छ और हरित ऊर्जा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने 37.5 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है।
सोलर एनर्जी वंस जस्ट अ विजन इज नाउ अ पावरफुल रियलिटी लीडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड अ क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल पाथ। द प्रोग्रेस वी हैव मेड टुगेदर इज अनडिनायबल एंड द ट्रू पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी अनफोल्डिंग शोइंग अस जस्ट हाउ ट्रांसफॉर्मेटिव इट कैन बी। इन 2024 द ग्लोबल सोलर सेक्टर इज सेट टू रीच अप्रोक्सिमेटली 2 टेरावाट ऑफ द इंस्टॉल्ड सोलर फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी। दिस मार्क्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीप फ्रॉम जस्ट अ डिकेड अगो व्हेन सोलर वाज स्टिल कंसीडर्ड अ स्मॉल सेगमेंट विद द ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ISA का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधान के लिए $1,000 अरब का निवेश किए जाने की जरूरत है। श्री जोशी ने घोषणा की कि ISA ने आशीष खन्ना को अपना नया महानिदेशक चुना है। इस वर्ष ISA का आयोजन भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोक प्रशासन से संबद्ध लोगों को राष्ट्रवाद के मूल्य के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। उन्हें एक विकसित और एकजुट भारत के विश्वास के साथ बगैर किसी डर और पक्षपात के सभी भारतीयों की सेवा करनी चाहिए। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की आम सभा की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश तेजी से औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डेटा समाज की आवश्यकताओं का आकलन करने का बुनियादी आधार है। उन्होंने कहा कि डेटा मिथकों को दूर करता है और लोगों को जमीनी हकीकत से अवगत कराता है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2,50,00,000 से अधिक आवेदन जमा कराए गए हैं। 3 स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के बाद इनमें से 20,00,000 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि ये योजना पिछले 7 सितम्बर को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाना है। लगभग 10,00,000 पंजीकृत कारीगरों को टूल किट के लिए ₹15,000 तक की राशि ई वाउचर के जरिए मिल चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। आज शाम 5 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 तक पहुंच गया। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता 400 के आंकड़े को पार करते हुए गंभीर स्तर पर पहुंच गई। आनंद विहार में ये 442 दर्ज किया गया, रोहिणी में 413, पंजाबी बाग में 405 और आरकेपुरम में 402 दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चरण 1 और 2 के तहत कई उपाय किए हैं। धूल प्रदूषण को उसके स्रोत पर नियंत्रित करने के लिए दिल्ली एनसीआर में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन तैनात की गई हैं। पिछले महीने की 15 तारीख से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में एक ग्रैप निगरानी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष और राज्यों के संबंधित नोडल अधिकारियों के बीच सुचारू संचार के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में निर्माण स्थलों और अवैध डंपिंग स्थलों का गहन निरीक्षण भी किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण नियमों का अनुपालन ना करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए एक गहन अभियान भी चलाया गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा मौजूदा स्थिति के अनुसार ग्रैप अवधि के दौरान प्रयासों को और तेज किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा के लिए कल एक बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए चलाए जा रहे विंटर एक्शन प्लान की समीक्षा भी की जाएगी। श्री राय ने बताया कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों के लिए जारी किए गए ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्रदूषण संबंधी 88% शिकायतों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक प्रदूषण संबंधी शिकायत कर सकता है। श्री राय ने संबंधित विभागों को शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर अपराधों से निपटने के विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की निदेशक रूपा एम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में श्रोताओं को हमारे विशेषज्ञों से साइबर अपराधों से संबंधित विषयों, खासकर इनसे सुरक्षित रहने और ऐसे मामलों का शिकार होने पर क्या करें, इससे जुड़े प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोता रात 9:30 बजे के बाद टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #askar के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। फिल्म निर्देशक, नाटककार, पटकथा लेखक और अभिनेता ऋत्विक घटक की आज 100वीं जयंती है। उनका जन्म 4 नवंबर 1925 को ढाका में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1960 में मेघे ढाका तारा, 1961 में कोमोल गांधार और 1965 में सुबोर्नोरेखा सहित कई फिल्में बनाई। राजधानी दिल्ली में आज मौसम हल्की धुंध के साथ सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा के अंबाला में आज वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इस संस्करण का उद्देश्य दोनों देशों की सेना और वायुसेना के कर्मियों द्वारा पहली बार सैन्य स्तर की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करना भी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने आईटीओ स्थित छठ घाट का दौरा किया। छठ पर्व पर यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।